ये भक्तजन आज 16 जुलाई 2020 का वीरू साहब के लिए मंगल में कल्याणकारी हो। आज का हमारा विषय श्री महाराज के बड़े सुंदर सुंदर प्रसंगों को लेकर आएगा, लेकिन उससे पूर्व मैं ये कहूंगी महाराज जी की एक वाणी है, अगर किसी ने गुरु धारण किया है तो उसे अपना मन शुद्ध रखना चाहिए। प्रिय भक्तों, श्री महाराज जी के अंतिम भक्त आप सब महिलाएं बहनें भाई, श्री महाराज की इस वाणी को, इस कथन को सदैव याद रखेंगे, ऐसी मुझे आशा है कि आपने अगर आपने या मैंने किसी ने भी श्री महाराज को अपने गुरु के रूप में देखा है, समझा है, जाना है, आपका मन मानता है कि श्री महाराज जी सच्चे गुरु हैं, तो महाराज जी की ये वाणी कि अगर किसी ने गुरु धारण किया है तो उसे अपना मन शुद्ध रखना चाहिए। और मन की शुद्धि क्या है, प्रश्न पैदा होता है, कह तो देते हैं, सुन भी लेते हैं हम लोग, मन खुद रखना चाहिए, पर मन की शुद्धि क्या है और कैसे होती है। मन की शुद्धि, मन बड़ा चंचल है, अपने मन जड़ है, मन का कोई अपना ऐसा अस्तित्व नहीं है, फिर भी मन चंचल है। मतलब मन पर जब आत्मा का प्रकाश पड़ता है तो मन चंचल हो उठता है। हमारे दिमाग के एक बाएं हिस्से में एक छोटा सा स्थान होता है, उसे हम मन की संज्ञा देते हैं। जब हमारी आत्मा का प्रकाश उस पर पड़ता है तो मन थोड़ा चलायमान होता है, और मन इतना तेज होता है कि वायु की गति भी वो पार कर देता है। वायु अगर यहाँ से सोमलता जी आपके घर तक जाएंगे तो कुछ एक मिनट क्षण तो लगेगा, लेकिन मन तो अभी आपके घर पहुंची है मेरा, देख बोलने की बात ही नहीं, इतना है मन चंचल, और साथ ही अशुद्ध भी हो जाता है। वैसे तो ये एक स्फटिक की भांति है, लेकिन जब इस पर धूल जमती है तो ये अशुद्ध हो जाता है, ये अपवित्र हो जाता है। वो धूल कौन सी है, वो है संसार की धूल, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या मद मत्सर, जितने भी गलत काम है संसार में वो सब अशुद्धि के कारण बनते हैं। इन्हीं कारणों से मन अपवित्र हो जाता है, और मन की अपवित्रता से मनुष्य बहुत गलत गलत काम कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि बड़े बड़े महात्मा लोग भी मन की चंचलता के कारण अपने तप त्याग को त्यागलि देकर संसारिक बंधन में पुनः आ जाते हैं। अतः मन का शुद्ध रखना अत्यंत आवश्यक है। शुद्ध मतलब पवित्र, पवित्र मतलब कि हम संसारिक प्रपंच में अपने मन को ना डालें। संसारिक प्रपंच क्या है, राग, किसी से इतना मोह कर लेना, राग का मतलब मोह, प्रेम नहीं है वो, मोह है, इतना मोह कर लेना कि उसके लिए हम झूठ भी बोल सकते हैं, उसके लिए हम चोरी भी कर सकते हैं, उसकी बातों को छिपाने के लिए हम बहुत कुछ आडंबर भी कर सकते हैं, ये है राग, अनुराग नहीं है, ये है राग। राग और दूसरा है द्वेष, कहीं तो हम इतना राग कर बैठते हैं और कहीं हम इतना द्वेष करते हैं किसी दूसरे आदमी से कि जहाँ की उसकी आवश्यकता ही नहीं है, हम उसे देखना भी नहीं चाहते, अगर वो दिखाई दे तो हमें घृणा सी होती है, ये क्यों दिखाई दिया आज, मैंने भाग्य कैसे है कि देखो तो इसको देखा मैंने, तो ये हो जाता द्वेष। तो द्वेष भी नहीं होना चाहिए, न राग होना चाहिए न द्वेष होना चाहिए। जिसके मन में न राग है न द्वेष है वो मन पवित्र है, शुद्ध है और भगवान कृपा का पात्र है। और इसके साथ ही मन में हंकार ही नहीं आना चाहिए, अस्मिता। हाँ मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मन कहता है तेरे जैसा कोई नहीं है, तू क्यों उनके आगे पीछे घूम रहा, तू क्यों गुरु बनाता है, क्यों तू गुरु के आगे झुकता है, क्यों तू मंदिरों में जाता है, तुझे क्या आवश्यकता है, तू तो बड़ा महान है। और मन के इस वचन को सुनकर जीवात्मा इतराती है, हंकार करती है और ना करने योग्य कार्य भी करती है, तो इसको कहते हैं अस्मिता। फिर आ गया अज्ञान। मन में जब अज्ञान आ जाए, अज्ञान क्या है, अज्ञान है कि आत्मा को दे मान लेना। हम समझते हैं कि हम ये दे है, शरीर है, पांच तत्वों का पुतला है, लेकिन नहीं, आत्मा ये नहीं है। आत्मा सुदूर है, भीतर भी है, बाहर भी है, आत्मा अथवा परमात्मा का प्रकाश सब जगह होता है। तो आत्मा के प्रकाश को ध्यान में रखते हुए हमें प्रत्येक कार्य करना चाहिए, जिससे हमारा मन अज्ञानी ना बने। कई दफा हम कहते हैं कि वो मुझे ज्ञान ही नहीं रहा, मैंने ये काम कैसे कर दिया, तो नहीं करना चाहिए था। उस वक्त हम अज्ञान की दिशा में होते हैं, अज्ञान की दशा ऐसी होती है मनुष्य समझ ही नहीं पाता। राग द्वेष अहंकार अज्ञान, और साथ ही साथ हमारा मन हमें बार बार कहता है तू मर जाएगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। फिर हम उससे बहुत डरते हैं, मृत्यु शब्द से ही हम डरने लगते हैं, भय पैदा होता है, चल मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर क्या होगा। और इस डर से हम बहुत ही भयभीत रहते हैं, तो मन को ये भय भी नहीं रखना चाहिए। अगर हम राग द्वेष अहंकार और अज्ञानता तथा मृत्यु के भय से दूर रखकर मन को भगवान की आराधना में लगाएं, तो मन शुद्ध हो जाता है। और मन के शुद्ध होने से हमें अपनी आत्मा के दर्शन होते हैं, आत्म दर्शन करने के पश्चात हमें परमात्मा के दर्शन भी सुलभ हो जाते हैं। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि अगर किसी ने गुरु धारण किया है तो उसे अपना मन शुद्ध रखना चाहिए। गुरु किस लिए धारण करते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए। गुरु भी धारण किया और मन को संसारिक मोह ममता में फंसा रखा, सीधे काम करते रहे, तो फिर भगवत प्राप्ति तो क्या, मानव जीवन भी अगले जन्म में मिलेगा, फिर हम निम्न गति की ओर जाएंगे, फिर हम पाताल की ओर जाएंगे, उदर गति की ओर नहीं। तो इसलिए मन को शुद्ध रखना अत्यंत आवश्यक है। मेरी अब सबसे यही विनती है कि हम सब सर्वप्रथम अपने मन का ध्यान रखें कि हमारे मन में क्या चल रहा है, क्या गलती हम करते हैं, आगे को हम इन गलतियों का ध्यान करेंगे और फिर उसको दूर करने का प्रयत्न करेंगे। अब आगे आइए महादेवी तीर्थ की ओर। फरवरी का महीना आरंभ हो गया है, सर्दी काफी है, श्री महाराज जी धूप में बैठते हैं, प्रातः साय बाहर निकलना कठिन हो रहा है। 12 फरवरी को लाला साधु राम जी ने श्री महाराज जी को अपने घर बुलाया है। उनके छोटे सुपुत्र दीपन जी गाड़ी लेकर आए हैं। श्री महाराज जी तथा मैं गाड़ी में बैठे हैं, दीपन जी भी गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी लाला साधु राम जी के घर के सामने रुकी। लाला साधु राम प्रतीक्षा में खड़े थे। उन्होंने भूमिष्ठ होकर श्री महाराज जी को प्रणाम किया और बड़े आदर से घर के अंदर ले गए। लाला जी की धर्मपत्नी श्रीमती द्रौपदी देवी जी की खुशी का ठिकाना नहीं है। घर के अन्य सदस्य भी हर्षित हैं। लाला जी पुलकायमान हो रहे हैं, मानो जन्म जन्मांतर की इच्छा पूरी हुई है। माला जी ने श्री महाराज जी की आरती उतारी तो घर के सभी सदस्य भी करवट खड़े हैं। लाला जी को आरती उतारते देखकर मुझे ऐसा लग रहा था मानो राजा जनक भगवान राम की आरती उतार रहे हैं। लाला जी के गृहस्थ के बड़े भाग्या हैं। आजकल उनकी पुत्री अपने पुत्र तथा दो पुत्रियों को लेकर कश्मीर से यहाँ आई है, इसलिए पूर्ण परिवार श्री महाराज की सेवा में रत है। कुछ देर पश्चात सभी बैठ गए। अब भोजन आरंभ हुआ। भालू भी हमारे साथ गाड़ी में आ गया था। श्री महाराज जी भालू को भोजन खिलाने लगे। कभी कभी वे एक को अपने मुंह में डाल देते और दूसरा को भालू को खिलाते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भोजन कर कुछ देर पश्चात लाला जी के अनुसार जगदीश के घर पर भी महाराज जी गए। वहाँ से हम सब मंदिर लौट आए। एक दिन ज्योति आया। श्री महाराज ने उससे कहा, स्वयं अपने से जितनी सेवा हो सकती है करो, परंतु मंदिर का नाम लेकर दूसरों से सेवा मत मांगो। साथ ही कहा, अगर किसी ने गुरु धारण किया है तो उसे अपना मन शुद्ध रखना चाहिए। 17 फरवरी को श्री राम कृष्ण देव की जयंती मनाई गई। अब महाशिवरात्रि के उत्सव की तैयारियां हो रही हैं। 25 फरवरी को ही तंत्र भक्तों का आगमन हुआ। शिव नंदी मनाई। जम्मू से भक्त आ गए हैं। रात्रि में सब मंदिरों की सफाई करके इन्हें सजाया गया। 26 फरवरी को प्रातः ओम नमः शिवाय के महामंत्र का पाठ आरती के शीघ्र बाद आरम्भ हो गया। महामंत्र की ध्वनि गुंजायमान हो रही है। उधर भंडारा गृह में फलाहार तैयार हो रहा है। जून के समय हवन कन्या पूजन का पश्चात भंडारा आरम्भ हो गया। श्री महाराज जी बैठे हैं, भक्त उनके दर्शन कर हर्षित होते हैं। रात्रि तक भंडारा चालू रहा और रात्रि जागरण भी किया गया। इस प्रकार दूसरे दिन महाशिवरात्रि का पर्व संपन्न हुआ। आज का महीना आरम्भ हो गया है। श्री महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं। इधर अपने भक्तों से बड़े भावुक होकर कहते हैं, बाबा अब जाने वाला है इसलिए समाधि बनानी चाहिए। इन दिनों श्री राजाचार्य की एक लात में दर्द है। ये लगभग एक महीना से मंदिर नहीं आए हैं। श्री महाराज जी ने मुझे कुछ भक्तों सहित उनके शुद्ध लेने के लिए भेजा। जब वहाँ से लौट कर आई तो श्री महाराज को बताया कि मास्टर जी अब ठीक है, तो स्वामी जी महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए। श्री महाराज जी कभी कभी भक्तों को गले लगाकर रोते हैं। इस पर भक्तों को भी रुलाई आ जाती है। इसमें दुख करना का रूप रूप धारण करके मानो स्वामी जी महाराज खड़े हैं। और कभी श्री महाराज की लीला देखकर ऐसा लगता है मानो भगवान अपने भक्त को विराट रूप में परिचित करवाने के लिए अपना वह रूप दिखा रहे हों कि किसी प्रकार भक्त भावी वियोग के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाए। भक्ति जानते हुए भी कि ये नर लीला है, प्रेम वश दुख और सुख से विमोहित हो जाते हैं। श्रीमती उषा शर्मा अपने घर जम्मू वापस जा रही है। इस बार बस 17 दिन श्री महाराज जी के सानिध्य में रही। अतः अब जाते बार मन भर आया है। श्री महाराज उषा रानी से बातचीत करते हुए भाव विभोर आंसू बहाते हुए कह रहे हैं, माँ ये अंतिम दर्शन है, बाबा फिर नहीं मिलेगा। इसी प्रकार भक्त भगवान अपने भक्त के भाव की बड़ी देर तक पूर्ति करते हैं और बताते हैं कि जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी है। आखिर उषा रानी ने सिसकियां भरते हुए विदा ली। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। गीता माँ जय माता दी।